आज कल।
प्रिय श्रोताओं, कार्यक्रम आजकल में आपका स्वागत है। आज हम आतंकवादी गुट दाइश की प्रचार शैलियों के बारे में चर्चा करेंगे। मरियम मेहरदादी और गायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए।
नेटवर्क की दुनिया में विस्तार के साथ ही आतंकवादी गुट भी आधुनिक होते जा रहे हैं। इस प्रकार से कि आतंकवादी गुट दाइश इंटरनेट की संभावनाओं से लाभ उठाकर अपने दिग्भ्रमित विचारों के प्रचार प्रसार का प्रयास करता रहता है। आज के कार्यक्रम में हम दाइश की कुछ शैलियों की चर्चा करेंगे जिनका प्रयोग वो अपने दिग्भ्रमित विचारों को फैलाने के लिए करता है। इंटरनेट की दुनिया में विस्तार से आतंकवादी गुट दाइश इस कार्य में सक्षम हो गया है कि ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब जैसे संसाधनों से लाभ उठाकर अपने भ्रष्ट विचारों को दुनिया में फैलाए।
ट्विटर दाइश का एक महत्वपूर्ण संचार माध्यम था। यह आतंकवादी गुट आरंभ में अंग्रेजी भाषा में ट्वीट करता था और उसके बाद वो अरबी भाषा में भी ट्वीट करने लगा। दाइश कुछ समय तक एक यूजर्स के अकाउंट पर खबरें ट्वीट करता था और उसके बाद जब वो अकाउंट बंद हो जाता था तो दाइश दूसरे यूजर्स के अकाउंट से ट्वीट करने लगता था। इस अर्थ में कि आतंकवादी गुट दाइश अधिकतर एक जैसे कई नामों से ट्वीट करता था और जब एक अकाउंट बंद हो जाता था तो जल्द ही दूसरे यूजर्स का अकाउंट इस्तेमाल करने लगता था।
आतंकवादी गुट दाइश के नियंत्रण में जो क्षेत्र थे वो वहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी को अच्छा दिखाने का प्रयास करता था ताकि यूरोपीय युवाओं को इस आतंकवादी गुट में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इस संबंध में जॉन कैंटली की उस वीडियो की ओर संकेत किया जा सकता है जिसमें दाइश लोगों की सामान्य जिंदगी को दिखाने की चेष्टा करता है। दाइश ने एक मिनट का वीडियो क्लिप जारी किया और इस क्लिप में दाइश के एक लड़ाके को बच्चों में आइसक्रीम व चॉकलेट बांटते या अस्पतालों में घायलों और बूढ़ों का हाल चाल पूछते हुए दिखाया गया है। इंटरनेट के प्रयोग ने दाइश को यह संभावना प्रदान कर दी है कि वो अपने यूरोपीय व गैर यूरोपीय पक्षधरों के लिए साइट बनाकर अपनी नीति से उन्हें अवगत करवाए और इंटरनेट के माध्यम से संपर्क को बेहतर बनाए तथा जानकारियों को शेयर करता रहे।
आतंकवादी गुट दाइश की ओर से जो वीडियो, फिल्म या वीडियो क्लिप्स जारी होती थीं उनमें संदेश होता था, जबकि दूसरे आतंकवादी गुटों की ओर से जारी होने वाली फिल्मों में ऐसा नहीं होता था। इसी प्रकार दाइश की ओर से जारी होने वाली वीडियो क्लिप्स में विशेष तकनीक का प्रयोग किया जाता था, जैसे ऊंचाई से फोटो लेना और आफ्टर इफेक्ट जैसे सॉफ्टवेयर का प्रयोग। और दाइश का यह कार्य इस बात का सूचक था कि वो प्रचार करने में गंभीर है और इसके लिए उसने पूंजी निवेश कर रखा है। उदाहरण के तौर पर, यद्यपि काफिर पसंद न करें शीर्षक के अंतर्गत उसने एक वीडियो फिल्म बनाई और इस फिल्म में दाइश ने अपनी हिंसात्मक प्रवृत्ति को उन लोगों को दिखाया जो सीरिया में उसकी कैद में थे। इसके अलावा दाइश पोस्टर और छोटी छोटी क्लिप्स प्रकाशित करता था और इनमें ये दिखाया जाता था कि वो किस प्रकार लोगों की हत्या करता था और इन क्लिप्स के नीचे अंग्रेजी में उसका अनुवाद भी लिखा होता था, जो इस बात का सूचक था कि दाइश दूसरे देशों के जवानों को अपने गुट में शामिल करने के लिए गंभीर रूप से प्रयासरत है।
इसी प्रकार आतंकवादी गुट दाइश ने यूरोपीय महिलाओं व लड़कियों को अपने गुट में शामिल करने के लिए विभिन्न सोशल साइटों में जूरा फाउंडेशन नाम का एक पेज बनाया। इस पेज पर दाइश के आतंकवादियों के समर्थन का विषय पेश करके इस गुट में शामिल होने के लिए यूरोप की जवान लड़कियों को प्रोत्साहित किया जाता था। यूरोपीय लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए दाइश का एक तरीका ये भी था कि वो ऐसी तस्वीरें प्रकाशित करता था जिनमें ये दिखाया जाता था कि दाइश के परिजन बहुत खुश हैं और दाइश अपने गुट में शामिल लड़कियों की यादों व बातों को इंटरनेट पर शेयर करता था। اس کے علاوہ لڑکیوں و محلاؤں کو داعش میں شامل کرنے کے لیے یہ گٹ جہاد النکاح کے ہتھ کنڈے کا پریوگ کرتا تھا۔ اس کرت کے لیے اس گٹ کے ایک سلفی مفتی نے جہاد النکاح کا فتویٰ دے رکھا تھا۔
اس آتنکوادی گٹ نے اشم خان نامک محلاؤں سے وشیش ایک پترکہ پرکاشت کی اور ٹمبلر نامک سوشل ویب سائٹ میں بھی کافی پیٹ بنا لی۔ گیات رہے کہ ویب سائٹ محلاؤں کے مدھے کافی لوک پریہ ہے اور اس میں بہت ابھدر چیزیں و تصویریں دکھائی جاتی ہیں۔ لڑکیوں کو لبھانے کے لیے داعش نے جن شیلیوں کو اپنایا ان میں سے ایک یہ تھی۔ اسی پرکار آتنکوادی گٹ داعش نے الخنسا سینک بریگیڈ بنائی اور سوشل ویب سائٹوں پر تصویریں اور فلمیں بھیج کر یہ سندیش دینے کا پریاس کیا کہ داعش کی خلافت میں مہیلائیں ہتھیار لے کر چل پڑی ہیں اور اپنی رکشا کر سکتی ہیں۔
آتنکوادی گٹ داعش نے سیریا اور عراق کے وبھن کھیتروں میں دل دہلا دینے والے اپنے اپرادھوں کی فلم بنا کر سینک اور راجنیتک کھیتر میں اپنی شکتی درشانے کا پریاس کیا اور اتیوادی لوگوں کو پلائن کرنے ان کھیتروں میں آ کر رہنے کے لیے پروتساہت کیا جہاں اس کی تتھا کتھت سوئم بھو خلافت تھی۔ داعش نے جو ہردے ودارک اپرادھ انجام دیے ان میں کچھ اس پرکار ہیں، جیسے لوگوں کو اونچائی سے پھینک دینا، پنجڑوں میں بند کر دینا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کے لیے جنگلی جانوروں کے سامنے چھوڑ دینا، زندہ جلا دینا آدی۔ زندہ جلا دینے کی ایک ہردے ودارک گھٹنا اس سمے پیش آئی جب داعش نے جارڈن کے ایک ویمان چالک کو زندہ جلا دیا۔ آتنکوادی گٹ داعش نے موت کے گھاٹ اتار دینے، بلاتکار اور داس بنا لینے کی نئی نئی شیلیاں اپنائیں تاکہ اس طرح اتیوادی جوانوں کو اپنے گٹ میں شامل کیا جا سکے۔ چونکہ یہ گٹ لوگوں کا دھیان اپنی اور کھینچنے کے لیے لالائت رہتا تھا، اس لیے وہ اس لکش کو پراپت کرنے کے لیے ہمیشہ نئی شیلیاں استعمال کرتا تھا۔
وشو میڈیا نے بھی داعش کے ان کرتیوں کو کوریج دیا اور چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے داعش کی سیوا کی۔ اس پرکار داعش نے جو تباہی مچائی اور تانڈو کیا اسے کوریج دے کر وشو میڈیا نے ٹھیک اسی چیز کو ویوہارک بنایا جسے وہ چاہتا تھا۔ اسی پرکار آتنکوادی گٹ داعش اپنی سینک شکتی کے بارے میں فلموں کے پرسارن کے ساتھ یہ دکھاتا تھا کہ عراق کے موصل اور سیریا کے رقہ شہر کے لوگ بہت آرام سے ہیں اور وہاں سے نردھنتا سماپت ہو گئی ہے، تاکہ اس پرکار وہ گٹوں اور بیکار یوواؤں کی اپنے ادھکرت شتروں کی اور پلائن کی بھومی پرشست کر سکے۔
روشک بات تو یہ ہے کہ آتنکوادی گٹ داعش نے اپنے بھرشٹ وچاروں کے پرچار و پرسار کے لیے ایسی استھتی میں میڈیا سے لابھ اٹھایا اور اپنے جگھنیہ اپرادھوں کی ویڈیو فلم و کلپس پرسارت کیں کہ جب اس کا ماننا تھا کہ تکنیک کا پریوگ سیمت ہونا چاہیے اور داعش کے دھرم گروؤں کے فتوے کے انوسار فلم دیکھنا، یہاں تک کہ سنیما گھر جانا بھی حرام ہے۔ داعش نے میڈیا سے وبھن پرکار سے لابھ اٹھا کر جہادی میڈیا آرمبھ کی۔ یہ جہادی میڈیا اس سمے آرمبھ ہوا جب داعش نے یوزین آرمسٹرانگ نام کے امریکی بندھک کا سر ورش 2014 میں قلم کر دیا اور اس کی کلپ داعش نے یوٹیوب پر ڈال دی۔ اس سمے اس کلپ میں لائٹنگ آدی کا جو کام کیا گیا وہ پراتھمک تھا، پرنتو داعش نے اپنے اس کار سے پرچار کا مارگ و لکش اسپشٹ کر دیا۔ آرمبھ میں داعش نے جو فلمیں و کلپس بنائیں وہ فلمیں بنانے کی دشٹی سے کمزور تھیں، پرنتو ولو کرہل مشرکون نام کی جو فلم داعش نے بنائی وہ گنوتا کی دشٹی سے اتم تھی۔ اس فلم میں 13 سینکوں کو موت کے گھاٹ اتارتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔
اس کے بعد آتنکوادی گٹ داعش نے شولہائے جنگ نام کی ایک ڈاکیومنٹری فلم پرکاشت کی۔ اس فلم کے ایک بھاگ میں عراقی اور سیریائی سینکوں کے ساتھ داعش کی لڑائی کو دکھایا گیا ہے۔ اس فلم نے وشو میڈیا کا دھیان اپنی اور کھینچا کیونکہ اس میں جو تصویریں لی گئی تھیں ان میں بہت اچھ تکنیک کا پریوگ کیا گیا تھا اور فلم کی جو وشے وستو تھی وہ انگریزی بھاشا میں تھی اور اس فلم میں ان راشٹروں و سرکاروں کو سمبودھت کیا گیا تھا جو داعش کے خلاف امریکہ دوارا بنائے گئے تتھا کتھت انتراشٹریہ گٹھ بندھن میں شامل تھے۔ समय बीतने के साथ साथ आतंकवादी गुट दाइश ने युद्धों व लड़ाइयों में कैमरों का प्रयोग बढ़ा दिया और इस कार्य से उसने अपने संबोधकों तक अपने संदेश को पहुंचाने का प्रयास किया और दाइश द्वारा बनाई जाने वाली समस्त फिल्में सोशल वेबसाइटों में अपलोड होती थीं। आतंकवादी गुट दाइश के तत्व इस संबंध में इस प्रकार अमल करते थे कि उनकी बर्बरता फिल्म की पहली पहचान बन गई और खासकर इस बर्बरता को सिर कलम करने के अवसरों पर देखा जा सकता था।
इन फिल्मों में ये दिखाया जाता था कि दाइश के लड़ाके दुश्मन के गढ़ में घुस गए हैं। इसी प्रकार इन फिल्मों में फिल्म बनाने के पेशावराना तरीकों का प्रयोग किया जाता था। फिल्म बनाने का ये तरीका सीरिया में नुसरा फ्रंट सहित दूसरे आतंकवादी गुटों के प्रोत्साहन का कारण बना और इन गुटों ने इस संबंध में दाइश का अनुसरण किया। आतंकवादी गुट दाइश के विशेषज्ञों ने छोटी फिल्में बनाने के संबंध में तस्वीरें आदि के संदर्भ में आकर्षक बिंदुओं का ध्यान रखा और उच्च तकनीक का प्रयोग किया। दाइश के विशेषज्ञों ने बंधक बनाए गए अमरीकी पत्रकार जेम्स फॉली के सिर कलम किए जाने के संबंध में जो फिल्म बनाई है उसे इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। इसके अलावा दाइश ने दूसरी फिल्में भी बनाई हैं, जैसे लेट्स गो। इस फिल्म में जोशीली तस्वीरों और उत्साहवर्धक संगीत का प्रयोग करके पश्चिमी जवानों को संबोधित किया गया है और उन्हें इराक तथा सीरिया में दाइश के साथ मिलकर लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
आतंकवादी गुट दाइश ने इसी प्रकार बहरों के लिए भी फिल्म बनाई है। इस फिल्म में दो अर्धसैनिक संकेत की भाषा का प्रयोग करके पश्चिमी युवाओं का आह्वान दाइश से मिल जाने के लिए करते हैं। इस फिल्म में दोनों अर्धसैनिकों को एक दूसरे का भाई दिखाया गया है। इसी प्रकार इस फिल्म में एक को गुंगा और दूसरे को बहरा बताया गया है और दोनों इराक के मुसिल नगर में दाइश की ट्रैफिक पुलिस का काम संभाल लेते हैं।
एक ध्यान योग्य बिंदु यह है कि दाइश ने जो फिल्में बनाई हैं उन सब में नारंगी रंग का प्रयोग किया गया है। दाइश जब लोगों को गोली मारने या सिर कलम करने की तैयारी करता है तो उन्हें नारंगी रंग का वस्त्र पहनाता है। सवाल यह है कि दाइश ने इस रंग का चयन क्यों किया। इसका कारण ये था कि दाइश इस रंग का चयन करके किसे क्या संदेश देना चाहता था। अमरीकी समाचार पत्र वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि दाइश अपने बंधकों को जो नारंगी रंग का वस्त्र पहनाता था, यह चीज़ उसने ग्वांतानामो के बंदियों से ली थी और यह चीज़ उन बंदियों का संयुक्त प्रतीक है जिनकी प्रतीक्षा में मौत हो।
वास्तव में आतंकवादी गुट दाइश ने इस रंग का चयन करके पश्चिम को प्रतिक्रिया दिखाने का प्रयास किया। इस अर्थ में कि अफगानिस्तान में अमरीकी हमला आरंभ होने के बाद वर्ष 2002 में क्यूबा में ग्वांतानामो की जेल बनाई गई और उसी समय से ग्वांतानामो के बंदियों को नारंगी रंग का वस्त्र पहनाया जाता था। इस आधार पर दाइश ने अमरीका से अपनी घृणा दर्शाने के लक्ष्य से नारंगी रंग का प्रयोग किया, जबकि ये विदित रूप था और वास्तविकता ये थी कि दाइश जो कुछ कर रहा था उसके पीछे अमरीका था।